Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vaha thik se dhanush rupi baan par, pranav rupi dhanush par apni tikshna buddhi rupi बाण को चढ़ा करके लक्ष्य के प्रति प्रमाद रहित होकर के छोड़ता है का मतलब ओंकार के आधार पर ब्रह्म को लक्ष्य बना करके अपनी बुद्धि को ब्रह्म के ओर भेजता है प्राणों के माध्यम से। तो जब धनुष से खींच करके बाण छोड़ा जाता है तो लक्ष्य के प्रति धनुष जाता है कि बाण जाता है, और धनुष तो धनुर्धारी के हाथ में ही रहता है। ऐसे जो ओंकार रूपी बाण है, जो दीर्घ प्रणव का उच्चारण करते हैं, ये दीर्घ प्रणव का उच्चारण रूपी जो धनुष है, ये धनुष तो आपका यही रहेगा, वो शब्द है ना। और उस ओंकार ध्वनि रूप धनुष पर चढ़ी हुई आपकी बुद्धि रूपी जो बाण है, वो ठीक से ब्रह्म के प्रति जब जाएगा तीव्र गति से और ब्रह्म का वेधन करेगा तो ब्रह्माकार बनेगी वृत्ति, ये कहा जाता है। ये माना जाता है कि समाहित चित्त होकर के साधक जब दीर्घ प्रणव का उच्चारण करता है, और बार बार उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये तो धनुष है ना, लक्ष्य का वेधन तो एक बार धनुष की सहायता से बाण छूट जाए ठीक से तो एक बार में ही लक्ष्य का वेधन हो जाता है, और अनेक बाण छोड़ने पड़ते हैं जो कुशल धनुर्धारी नहीं है उसको, कहीं लक्ष्य के इस बाजू में गया तो उस बाजू में गया, ठीक से लक्ष्य पर नहीं लगा तो कई बाणों को भेजना पड़ता है बार बार धनुष से। ऐसे बार बार ओंकार उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक बार दीर्घ प्रण उच्चारण हो जाए समाहित चित्त पुरुष के द्वारा, और फिर ओंकार की जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि में अपने सूक्ष्मतम बुद्धि को अनुसंधान उस ध्वनि का करते करते उसी ध्वनि के साथ फैलने दें। शब्द की भी तरंगे निकलती है ध्वनि की, जैसे कहीं तालाब में आप बीचों बीच में एक हाथ कंकड़ फेंक दो, पहले एक तरंग निकलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो तरंग निकलते निकलते कहां पहुंचते हैं, किनारे पे जाकर के फिर शांत हो जाता है। ऐसे ही एक बार आप प्रणव का उच्चारण करते हैं और वो उच्चारित प्रणव ध्वनि जो हुआ उस ध्वनि का अनुसंधान करने के लिए बुद्धि को लगा लो, उसी ध्वनि पर बुद्धि को बिठा दो, तो वो ध्वनि जाकर के जहां समाप्त होगा, माना जाता है कि वो जो ओंकार का ध्वनि है सीधे जाकर के पहुंचता है अनंत में ही। अमात्र ओंकार कहा गया है मांडुक्य कारिका में, वो अनंत है, और वहां जाकर के पहुंचा तो वहां तक बुद्धि को आपके फैलने दें, और वहां बुद्धि फैलेगी अनंत आकार की होगी, अपरिछिन्न आकार की होगी, तो उसमें जो अभिव्यक्त होगा वो किसी उपाधि वाला चैतन्य नहीं होगा। उसमें अभिव्यक्त चैतन्य माना जाता है ब्रह्म है। जहां ओंकार ध्वनि जाकर के शांत हुआ, वो कहां शांत होगा? तो यदि मांडुक्य कारिका पढ़ी है, मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है, तो आकार मात्रा उकार में समाहित होती है, उकार मात्रा मकार में समाहित होती है, और मकार अमात्र ओंकार में, वो लक्ष्य है, वो अव्यवहार्य है। वहां जाकर के बुद्धि समाहित हो जाए तो माना जाता है ओंकार रूपी धनुष पर चढ़ा हुआ तीक्ष्ण बुद्धि रूपी बाण ठीक से ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन कर सका, वहां पहुंच गया। बुद्धि उस आकार की बननी चाहिए, सारे आकार जो जगत के हैं वो समाप्त हो जाए, और जो निराकार है, निराकार वही बुद्धि, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और बाण लक्ष्य में जाकर के लग जाता है, लक्ष्य का वेधन करता है, तो लक्ष्य के साथ ही चिपका हुआ रहता है कि नहीं होता? कोई व्याध मृग आदि पर बाण फेंकता है और उसके शरीर में ठीक से लग जाता है तो शरीर से अलग होता है या शरीर में ही चिपका रहता है? चिपका रहता है। ऐसे आपकी बुद्धि भी ओंकार रूपी धनुष के सहारे से, आपकी बुद्धि रूपी बाण ब्रह्म रूपी लक्ष्य में चला गया और उसका वेधन कर लिया, का मतलब बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ हो गई, ब्रह्मस्थ हो गई, तो फिर उसे वहां से विचलित न होने दें, वहीं पर स्थिर रखें। इसलिए गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने कहा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। आत्मा में अपने मन को, मन कहो बुद्धि कहो, एक बात है, अंतकरण सामान्य को कहा जा रहा, स्थापित करके किसी की भी माध्यम से आपने ओंकार का आश्रय लिया, ओंकार के माध्यम से बुद्धि को स्थापित कर दिया ब्रह्म में, तो फिर वहां से उसे विचलित नहीं होने देना, उसी स्थिति में बनाए रखें। वो लक्ष्य का वेदन हो गया तो एक बार आपको, आपकी बुद्धि को ब्रह्म से संलग्न कर दिया ओंकार ने, तो फिर ओंकार को भी भूल जाए, अपने ध्याता स्वरूप को भी भूल जा, और ओंकार ने बुद्धि को जहां पहुंचाया उस बुद्धि के साथ आप भी तो गए हैं। साभास बुद्धि इसलिए तो कहा ना, वो बाण है, तो बुद्धिस्त चिदाभासी अभी तक समझते हैं अपना स्वरूप, वो बुद्धिस्त चिदाभास जिस चित्त का आभास है उस चित्त में पहुंच गया, तो फिर वो आभास पर भी दृष्टि न रख करके सीधे चिदाकार ही रहे, हमेशा वही मैं है। जितने अधिक समय तक वहीं टिकी रह सकती हैं उसे टिकाए रखना, ये और बीच में दूसरी वृत्ति को आने न देना, ये माना जाता है ओंकार के माध्यम से ब्रह्म का ध्यान। मुंडक उपनिषद में बताया गया उसी को यहां पर बताया जा रहा है पंचम प्रकरण में, और ऐसा करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे? तो सत्यकाम ने कहा कि प्रायणांतम यानी पूरा जीवन, आसुप्ते रामृते कालम नैद वेदांत चिंतया के अनुसार, बस प्रणव के सहायता से परब्रह्म का ही ध्यान करने में बुद्धि को लगा दिया, और वो परब्रह्म का ही ध्यान करती जा रही है, प्रारब्ध ध्यान करता उपासक का समाप्त हो गया, शरीर छूटेगा। लेकिन अभी अज्ञान की निवृत्ति तो हुई नहीं है, ओंकार की उपासना मात्र कर रहा है। ओंकार की ओंकार आलंबनक ब्रह्म की उपासना परिपक्व हो जाए तब भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान बना रहेगा वो तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान से निवृत्त होता है ना। फिर जैसे अज्ञानी के अनुपासक के प्राणों का उत्क्रमण होता है, ऐसे इसके भी प्राणों का उत्क्रमण होगा। हाँ, लेकिन वो प्रमाण से नहीं हुई, प्रमाण ही कहलाती। वो उपासना आपके प्रयत्न से उत्पन्न हुई ब्रह्माकार वृत्ति, वो ध्यान है, परब्रह्म का ध्यान है, उसे निधिध्यासन भी कह सकते हैं। ऐसे तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान उसे कहा जाता है निधिध्यासन। और यहां वो सब शोधन आदि ठीक से नहीं कर पाया विवेक की न्यूनता होने के कारण, और परब्रह्म का सीधे ध्यान कर रहा है ओंकार की सहायता से। वो अपने प्रयत्न से बनी हुई जो वृत्ति है, हाँ, तो प्रयत्न से बनी हुई वृत्ति बार बार अभ्यास करते करते वो सहज भी हो जाए तब भी वो उपासना का परिपाक माना जाता है। उपासना अनुष्ठेय साधन है और ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है। ज्ञान है प्रमा, वो प्रमाण से उत्पन्न होता है, साधक के प्रयत्न से नहीं। इसलिए ये ज्ञान का साधन है। तो इस ओंकार की उपासना से इस प्रकार की क्या होगा कि उपासक फिर ब्रह्मलोक जाएगा और वहां पर ब्रह्मा जिसे ऐसी उपासना करके जो जाते हैं, माना जाता है कि वे ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बैठने के लिए अधिकारी बन करके गए हैं। उनको ब्रह्मा जी अपने वेदांत स्वाध्याय में ससम्मान बैठने देते हैं और फिर वहां उनको परब्रह्म का ज्ञान होगा। उनसे तत्त्वमशादी अभेद बोधक वाक्यों को ब्रह्मादि से सुन करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमाण जनित वृत्ति होगी, वो पराविद्या कहलाएगी। वो यहां नहीं होगा, उपासक शरीर में ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्मलोक में जाकर के होगा। यदि इसी शरीर में होगा तब तो एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य भी मुह्यति के अनुसार यहीं पर वो मुक्त होगा, ये शरीर छोड़ करके विधेय कैवल्य को प्राप्त होगा। तो क्रम मुक्ति नहीं है, ओंकार उपासना तो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है। इसलिए मानना होगा कि उसका उत्तरायण मार्ग से गमन होता है, ब्रह्मलोक में जाता है और वहां उसे ज्ञान होगा, वहां फिर जीवन मुक्त होकर के रहेगा। लेकिन वहां ब्रह्मलोक का शरीर धारण करके रहना पड़ेगा जब तक चंद्रमा सूर्य है तब तक, संसार जब तक है तब तक। वहां एक बार पहुंचने के बाद प्रारब्ध ही इतना लंबा होता है कि ब्रह्मा जी के साथ ही शरीर छूटता है, बीच में नहीं आने देता। वहां जाने के बाद फिर मृत्यु लोक में आने की इच्छा हो जाए तो एक कल्प के लिए यहां के द्वार बंद हो जाते हैं, दूसरे कल्प में ही आ सकते हैं। जब ब्रह्मा जी बदल जाएंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं अब मेरे लोक में आए हो तो मेरे रहते रहते दूसरे लोक में नहीं जा सकते, जब मैं नहीं रहूंगा दूसरा ब्रह्मा आएगा तब आप लोग जहां जाना चाहते हो वहां जाओगे। जो दूसरे दूसरे उपासक हैं अज्ञानी, ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी दूसरे कल्प में उत्पन्न होते हैं, यहां आते हैं। तो ये जो ब्रह्मलोक में शास्त्र ने बताया पूर्ण विकास है और सब कुछ संकल्प मात्र से होता है, सब होता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां के जो दोष हैं, कुछ दोष तो ही हैं, इसलिए गीता कहती है पुनरावर्तिनो अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, अनित्यत्वादि दोष तो वहां भी है ही है ना, और वहां भोग में सबका साम्य होने पर भी, सबको चाहने पर भी वेदांत स्वाध्याय में बैठने को नहीं मिलेगा, वहां बाकी और जो व्यवस्थाएं हैं ब्रह्मा जी से मिलना चाहेंगे तो सब थोड़ी मिल सकते हैं, जिनको सालोक्य की मात्र प्राप्ति हुई, भारत में घूमने के लिए आए हुए, भारत का वीजा लेकर के जितने भी विदेशी नागरिक होते हैं सबके सब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलते हैं क्या? कोई कोई होते हैं जो अधिकारी उनके मिलने के उनसे वही मिल पाते हैं, बाकी तो भारत में जितने प्रांतों का वीजा मिला है उतने प्रांतों में जाकर के घूम फिर करके वापस जा सकते हैं उतने समय बाद, जहां का जहां की अनुमति नहीं है वहां भी नहीं जा सकते, ऐसे ही वहां पर भी है, चार प्रकार की मुक्ति है ना, संसारांतपाती, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, तो उसमें से सामीप्य वाले और सायुज्य वाले तो बिल्कुल ब्रह्मा जी के आसपास से ही रहेंगे और बाकी दोनों को तो दूर दूर से ही देखना होगा, कभी ब्रह्मा जी बाहर घूमने के लिए निकले तो कैसे हैं ब्रह्मा जी ये देखने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और देख पाएंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी कि बैठे ब्रह्मा जी के साथ बातचीत करें, कुछ प्रश्न पूछें, ये सब तो संभव नहीं होगा ना, बाकी भोग तो एक जैसे है, तो जिनको ऐसा हो रहा है उनको तो फिर वहां का दोष दिखेगा कि नहीं, कि वहां भी तारतम्य है, गुण दोष है, लेकिन वो यहां रहते हुए नहीं दिखता, वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, फिर वैराग्य होगा, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। ये ऐसे मंद वैराग्यवान जो अधिकारी हैं उन्हें भी श्रुति उनकी हितैषी बन करके क्रम मुक्ति उनको प्राप्त हो जाए, जिस ब्रह्मलोक के प्रति राग है वो ब्रह्मलोक भी जाकर के देख लें, वहां घूम फिर करके वहां के दोष देख लें, फिर वहां से विरक्त हो जाए, विरक्त होकर के वहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए, ऐसा उपाय बता रही है, वो है ओंकार उपासना। इसलिए सत्यकाम सैभ्य ने आचार्य पिपला जी से पूछा कि जो जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, अनेकों फल हैं अनुष्ठेय साधन के, उन अनेकों फलों में से कौन सा फल मिलेगा? तो आचार्य पिपला जी ने कहा कि ये जो ओंकार है यह ओंकार प्रतीक है परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का भी, अपर ब्रह्म की प्राप्ति वस्तुतः लक्ष्य नहीं है लेकिन वैराग्य की कमी होने के कारण अपर ब्रह्म की प्राप्ति द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति ये लक्ष्य है, वो जिससे हो सके ऐसा साधन बता रहे हैं कि जो जीवन पर्यंत यदि ओंकार में परब्रह्म का ध्यान करता है, वो दोनों का भी प्रतीक है, तो जिसका प्रतीक है, प्रतीक शब्द का कल अर्थ बताया था स्मारक, स्मरण कराता है प्रतीक, यानी वो जिसको देखने से आप जिसको याद करना चाहते हो उसकी याद आ जाए, उसे प्रतीक माना जाता है। तो मूर्तियों को देख करके, चित्रों को देख करके आप अपने इष्ट देव को याद करना चाहते हैं तो उसकी इष्ट देव की याद आती है, इसलिए शिव भक्त शिव मंदिर में जाता है, शिवजी की मूर्ति या शिवलिंग को देखता है उसे शिवजी याद आते हैं, तो वो प्रतीक माने गए शिव मूर्ति या शिवलिंग शिवजी के। हाँ, वही जो प्रतीक है, विग्रह है, वो प्रतीक माना जाता है मूर्तियों को। विग्रह यानी मूर्तियां, वो है प्रतीक। और उन मूर्तियों को देख करके मूर्तियों से भिन्न जो इष्ट देव है उनका स्मरण होता है। लेकिन शुरू में उन्हीं मूर्तियों को, प्रतीकों को ही माना जाता है कि यही भगवान कृष्ण है, यही शिवजी है, यही राम जी है। ऐसा प्रतीकों में ही इष्ट देव की भावना की जाती है। प्रतीक होते स्मारक। ऐसे आपको अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म आपका इष्ट है, उसका स्मरण करना चाहते हैं, तो श्रुति बताती है कि ओंकार उन दोनों का प्रतीक है, स्मारक है। कृष्ण को याद करना है तो कृष्ण का चित्र देखो या कृष्ण की मूर्ति देखो, कृष्ण याद आएंगे। अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म को याद करना है तो ओम उच्चारण कर लो तो अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म का स्मरण होगा। आपको आपका चित्त जिसके प्रति समर्पित है, जिसको याद करना चाहता है, वो ब्रह्म याद आएगा। इसलिए कहा हाँ, उच्चारण मात्र से। लेकिन उच्चारण कैसा करना पड़ेगा? उच्चारण करना पड़ेगा समाहित होकर के, थोड़ा एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करेंगे ना, क्या नाम, एकाग्र चित्त होकर के ओंकार का उच्चारण करेंगे तो माना जाता है आप जिस शब्द को सुनने के बाद आपका मन जिस आकार का बने वही उस शब्द का अर्थ समझते हैं ना। ऐसे ओंकार का अर्थ क्या होगा तो समाहित चित्त साधक ओंकार का उच्चारण करेगा और उस समय उसके चित्त में जो उपस्थित होगा पदार्थ वो माना जाएगा ओम का अर्थ। ओम उसका स्मारक है, शब्द अपने अर्थ का स्मारक होता है। तो ओम बोलने वाले के चित्त में समाहित भाव से करते हैं तो चैतन्य अभिव्यक्त होता है, उसकी निराकार ब्रह्म विषयक वृत्ति बनती है। इसलिए वही निराकार ब्रह्म ही ओंकार का अर्थ है, ये माना गया। और वो लोक प्रतीक के रूप में सामने ओंकार का चित्र रखते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो फिर ओम का ध्यान होगा। आपको ओम का ध्यान नहीं करना है, ओम तो स्मारक है, और ध्यान करना है ब्रह्म का। हाँ, इसलिए शब्द के हमने दो भेद बताए थे, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक। वर्णात्मक जो शब्द हैं वो तो एक प्रकार से मुख्य जो शब्द का स्वरूप है ध्वनि, उसका प्रतीक है। जो लिखते हैं ना, तो लिखना तो सब भाषा में एक जैसा नहीं होता, लेकिन ध्वनि सब भाषा में एक जैसा होगा। उच्चारण करेगा कोई तो ओम का उच्चारण करेगा तो उच्चारण तो एक जैसा ही होगा, लेकिन लिखेंगे संस्कृत में लिखेंगे तो वैसा, गुजराती में लिखेंगे थोड़ा अलग, बंगाली में लिखेंगे तो और अलग, तमिल में लिखेंगे तो और अलग, अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्पेलिंग अलग होगा। वो प्रतीक अलग अलग हो सकते हैं। वो जो वर्णात्मक शब्द है वह मुख्य शब्द जो ध्वनि है उसका प्रतीक माना जाता है। और मुख्य यहां पर प्रतीक किसको लिया जा रहा है? ध्वन्यात्मक ओंकार को, वह प्रतीक है ओम, ये ध्वनि। और ओम ये ध्वनि में आपको उसके अर्थ का अनुसंधान करना है। वो अनुसंधान करते करते पूर्ण रूप से चित्त समाहित होने के बाद जो एक चेतन अभिव्यक्त होता है उस वृत्ति में, वही ब्रह्म है, उसका फिर ध्यान ओंकार के सहायता से परब्रह्म का ध्यान, ओंकार का उच्चारण करने के बाद में ठीक से ओंकार उच्चारण होने से बुद्धि में अभिव्यक्त हो रहा है जो चैतन्य, उस चैतन्य का मय के रूप में ध्यान, ये माना गया ओंकार प्रतीक में परब्रह्म का ध्यान। और ये ध्यान यहां पर बताया जा रहा है। उससे पहले तो तीसरे चौथे मंत्र में पहले ओंकार उपासना की प्रशंसा की जा रही है और पंचम मंत्र में ओंकार उपासना का विधान तथा फल बताया जाएगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।